நமோ சித்தானம் நமோ ஆயர்யாணம் நமோ வஜ்ராயாணம் நமோ லோயே சௌஹாஹூனம் மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதமோ கணி மங்களம் குந்த குந்தாரியோ ஜைனதர்மோஸ்து மங்களம் ஆத்மா ஞானம் ஸ்வயம் ஞானம் ஞானாதன்னத்கரோதி கிம் பரபாவஸ்ய கர்தாத்மா மோகோயம் வ்யவஹாரிணாம் அஜ்ஞானதிமிரந்தானாம் ஞானாஞ்சனஶலாகயா சாக்ஷரன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. சுர அசுர நரபதி வந்தனே பிரவினஷ்ட காதி கர்மனே பிரணமன கரூ தர்ம கர்த்தா ஈத ஸ்ரீ மஹவீரனே வழி சேஷதி சங்கர அனே சௌசீத சுதாசி துவனே முனி ஜான திருக சாரித்ர தப வீராச்சரண யோக்தனே தே சர்வனே சாதே ததா ப்ரத்யேகனே ப்ரத்யேகனே வந்தோவழி ஹும் மனுஜக்ஷேத்ரே வர்ததாரிஹந்தனே ஹரிஹந்தனே ஸ்ரீ சீதனேய நமஸ்கரணகரியேரிதே கணதரனேய அத்யாபகோனே சர்வசாது சமூகனே சசுஷோர்கதர்ஷனஜானமோக்ஷபவித்ரஶ்ரமபாமினே ப்ராப்திகரூ சாம்யநீஜே நாதிசிவப்ராப்திபனே.
யஹ ப்ரவசன் சார் நாமக ஜோ க்ரந்த ஹை உஸ்கா அபி ஹமாரா ஞான தத்வ ப்ரஜ்ஞாபன் சல் ரஹா ஹை ஜிஸ்மே அபி தக் ஹம்னே பாஞ்ச் காத்தாயே தேக்கி தி ஔர் உஸ் பாஞ்ச் காத்தாவோமே சே சார் காத்தாவோமே ஜோ தேசேன் ஆச்சாரிய கி ஜோ சன்ஸ்கிருத் மே டீகா ஹை வோ அபி ஹம்னே தேக் லி ஹை. ஆஜ் பேஜ் நம்பர் 9 பர் ஜோ பாத் சலேகி பஹலே லைன் சே ராகாதி உபாதி விகல்ப ரஹித் ஜோ ஹை வஹான் சே அபி சன்ஸ்கிருத் மே ஜோ டீகா ஹை உஸ்கா ஸ்வாத்யாய யஹான் சல்னே வாலா ஹை. சாலு
तो कल हमने देखा था कि पहले चार गाथाओं में पंच परमेश्वरों को नमस्कार किया था और पांचवी गाथा में कहते हैं कि अब मैं साम्य को प्राप्त करता हूं, यानी चारित्र को प्राप्त करता हूं, क्योंकि चारित्र जो है वो निर्वाण को प्राप्त कराने वाला है. तो ये कैसा चारित्र है? तो उसको कहते हैं कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन जिसका लक्षण है, ऐसा जिसका प्रधान आश्रम है. तो ये किसको है? तो उसको कहते हैं कि पूर्वोक्त जो पंच परमेष्ठी है उनको ये विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान आश्रम है. अब उसी को समझाते हैं. कल इसमें से एक लाइन हमने पढ़ी थी कि अहम आराधक 8 नंबर पेज पर बीच में जो छोटी लिपि है उसमें अंतिम लाइन कि मैं आराधक हूं, यानी मैं उनकी आराधना करने वाला हूं, उनको नमस्कार करने वाला हूं. एते च अर्हदादयः आराध्या, और ये जो सब अर्हंत आदि में किस किस को लेना? आदिपाली अर्हंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये सब आराध्य है. इस तरह से आराध्य और आराधक ये दो भेद हो गए ना. आराध्य अलग और आराधना करने वाले आराधक अलग. इस तरह से जो विकल्प रूप द्वैत नमस्कार कहलाता है, यहां तक तो हमने कल पढ़ा था. अब अद्वैत नमस्कार की बात करेंगे. रागादि उपाधि विकल्प रहित परम समाधि बलेन आत्मनि एव आराध्य आराधक भाव पुनः अद्वैत नमस्कारो भन्यते। क्या कहते हैं, जो समस्त रागादि उपाधि के विकल्पों से रहित ऐसी जो परम समाधि है, आत्मा में जो अत्यंत लीनता है, उसके बल से आत्मा में ही आराध्य और आराधक भाव है। आत्मा स्वयं आराध्य है और आत्मा ही आराधक है, क्योंकि अपने शुद्धात्मा में स्वयं ही लीन हो गया है, यानी आत्मा ही आत्मा में लीन हो गया है, तो इसलिए उसने आत्मा ने अपना आत्मा को ही नमस्कार किया, ऐसे वो अद्वैत नमस्कार इसको कहते हैं। इति एवं लक्षणम् पूर्वोक्त गाथात्रय कथित प्रकारेण पंच परमेष्ठी संबंधिनम् द्वैत अद्वैत नमस्कारम् कृत्वा, इस प्रकार अभी जो बताया है उस तरह से पंच परमेष्ठियों को द्वैत नमस्कार, यानी पंच परमेष्ठी और मैं, ऐसा वो द्वैत नमस्कार, और अपने ही आत्मा में लीनता वो अद्वैत नमस्कार, इस प्रकार नमस्कार करके ततः किम करोमि, तब मैं क्या करता हूँ, रागादिभ्यो भिन्नो अयम स्वात्मोत्थ सुख स्वभाव परमात्मा इति भेद ज्ञानम तथा स एव सर्व प्रकार उपादेय इति रुचि रूपम सम्यक्तम। क्या कहते हैं कि रागादियों से मैं भिन्न हूँ और अपने आत्मा से उत्पन्न हुआ जो अपने आत्मा में जो स्थित है, ऐसा जो सुख स्वभाव है वो परमात्मा है, ऐसा जो भेद ज्ञान है, यानी मैं भिन्न हूँ और ये रागादि भिन्न है, अपना जो सुख स्वभाव है उससे रागादि भिन्न है, अपना जो ज्ञान स्वरूप है उससे रागादि भिन्न है, ये तो भेद ज्ञान हुआ। और स एव सर्व प्रकार उपादेवी थी, और जो अपना आत्मा से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वही सर्व प्रकार से उपादेय है, इस प्रकार से जो रुचि है ऐसे रुचि रूप सम्यक्त्व है। तो इति रुचि रूपम सम्यक्त्वम इति उक्त लक्षण ज्ञान दर्शन स्वभावम, इस प्रकार से आत्मा का लक्षण कैसा है, ज्ञान और दर्शन स्वभावी है। मठ चैत्यालयादि लक्षण व्यवहार आश्रमात विलक्षणम, देखो हमेशा जब जब जयसेन आचार्य को अभी जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान आश्रम ऐसा शब्द आया था ना, तो उसके लिए उन्होंने पहले वो व्यवहार आश्रम की बात की। आश्रम कैसे कहते हैं, ये पहले आश्रम होते थे ना, मठ चैत्यालय उसको आश्रम कहते थे, वो गुरु का कोई आश्रम है। तो ये व्यवहार से किसको आश्रम कहते हैं, तो मठ चैत्यालय इत्यादि लक्षण जो व्यवहार आश्रम है उस आश्रमाद विलक्षण, यानी उससे अलग जाति का। अब ये कौन सा आश्रम जो हमने यहाँ विशुद्ध ज्ञान दर्शन कहा था उसकी बात करेंगे, तो इस व्यवहार आश्रम से जो विलक्षण है यानी विपरीत है, उल्टा है, वो भावाश्रम है। व्यवहार आश्रम किसको कहा, जो हाँ मठ वगैरह जो पहले आश्रम कहलाते थे, अब यहाँ उससे विपरीत ऐसा, उससे अलग जाति का ऐसा ये भाव आश्रम है। तो ये जो भाव आश्रम है वो प्रधान आश्रम प्राप्त, यानी इस प्रकार के भावों को प्राप्त करके तत्पूर्वकम क्रम आयातम अपि सराग चारित्रम पुण्यबंध कारणम इति ज्ञात्वा परिवृत्य। देखो क्या कहते हैं, भाव आश्रम को प्राप्त करके, परंतु वो भाव आश्रम को प्राप्त करने के पहले क्या किया था, तो क्रम आयातम अपि, ये बहुत मुख्य बात है, क्रम से आ पड़ा जो ऐसा जो राग भाव है
सराग चारित्रम,
इसमें भी आया था। देखो अमृत चंद्राचार्य की जो टीका है इसी पेज पर नीचे हिंदी में नीचे से दूसरी लाइन, क्रम से आ पड़ने पर भी, यानी राग भाव करने नहीं पड़ते हैं, जब तक आत्मा में स्थिरता नहीं तब तक पुण्य तो करना चाहिए ना, ऐसी जो अज्ञानी की मान्यता होती है,
यानी करने धरने की जो अभी भी अभिलाषा बाकी है, इच्छा है कि मैं कर सकता हूँ ऐसी मान्यता है, वो गलत है, यही बात समझाना चाहते हैं।
यानी पुण्य तो करना चाहिए ना, यानी अभी मैं पाप कर रहा हूँ या पाप आ रहे, पाप तो आ जाते हैं, हम करते नहीं है, परंतु पुण्य जब हम करेंगे तभी होगे, ऐसी इस जीव की मान्यता है, अनादि की पड़ी हुई है। तो ये क्या कहते हैं कि ये जो भाव आश्रम रूप प्रधान आश्रम उसको प्राप्त करने के पूर्व क्या हुआ था, क्रम आयातम अपि सराग चारित्रम, यानी क्रम से आया हुआ जो सराग चारित्र है, यानी वहाँ उस भूमिका में जो आए हुए शुभ विकल्प है, मुनि के भूमिका में जो शास्त्र लिखने के, उपदेश देने के, दीक्षा देने के वगैरह जो विकल्प है वहाँ, तो उसको पुण्य बंध कारण इति ज्ञात्वा, उसको पुण्य बंध का कारण है ऐसा जानकर, देखो शुभराग तो आते हैं मुनि को, 28 मूल गुण धारण करने के जो शुभ विकल्प आते हैं वो आ पड़ते हैं, सहज रूप से आते हैं, परंतु फिर भी उनको पुण्य बंध का कारण है ऐसे जानकर परिवृत्त, यानी उसका त्याग करके
उसके पाचा एनाती पाचा परी ने
परिवृत्त यानी वहाँ से हटकर, यहाँ दूर से उल्लंघन करके ऐसा लिखा था, निश्चल शुद्धात्मानुभूति स्वरूपम वीतराग चारित्रम अहम आश्रयामी इति भावार्थ, यानी उस पुण्य को बंध का कारण है ऐसा जानकर उसको छोड़कर निश्चल यानी एक लीनता जो है चलायमान नहीं, ऐसी जो शुद्धात्मा की अनुभूति स्वरूप वीतराग चारित्र है उसको मैं आश्रयामी यानी उसका मैं आश्रय करता हूँ, इस तरह से यह भावार्थ है पांच गाथाओं का। एवं इस प्रकार प्रथम स्थले नमस्कार मुख्यत्वेन गाथा पंचकम गतम, इस प्रकार नमस्कार की मुख्यता से ये पांच गाथाओं गई।
अब इसके बाद अपने पास जो दिव्य ध्वनि सार नामक जो हिंदी किताब है उससे बात अभी चलेगी, और कल से ये जो बड़ी किताब है मतलब ओरिजिनल शास्त्र है वो आप नहीं लाएंगे तभी चलेगा, एक दो दिन अपने को उसी पुस्तक में से हम आगे बढ़ेंगे। ये जो है ना दिव्य ध्वनि सार, सबके पास है? हाँ निकाल लीजिए पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 मंगलाचरण जो है ना वहाँ पर, सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। अर्थ, ये सारी बातें हमने पहले मूल शास्त्र से देखी हैं, फिर भी हमें ये दिव्य ध्वनि सार यानी इस शास्त्र के ऊपर गुरुदेव ने जो प्रवचन किए हैं वो हम हिंदी में पढ़ेंगे अभी। आपको तो मैंने बता ही दिया था लेकिन फिर से दोबारा आपको याद कराता हूँ, जैसे गुरुदेव के प्रवचन होते थे तो उस समय वहाँ कोई ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने वो बाद में पूरा पूरा लिख लिया जो उनको याद रहता था, और वो लिख के खेमचंद जी आदि पंडित जो है रामजी भाई आदि इनसे ये और गुरुदेव से भी ये कन्फर्म कर लिया कि इसमें कोई गलती तो है नहीं, और ऐसे वो साइक्लोस्टाइज करके सबको वो उसका प्रचार करते थे, मतलब सबको देते थे पढ़ने के लिए। तो वो बात ये छिंदवाड़ा के डॉक्टर एडवोकेट है प्रबोध चंद जी, उनके पास वो पूरा सेट का सेट था, तो उनसे वो प्राप्त करके ये जो इनके जो लेखक है क्या नाम है इनका, विनोद जी जैन, वे भी छिंदवाड़ा के हैं, उन्होंने उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है, वह भी अभय कुमार जी आदि लोगों से वो जांच कर उन्होंने ये छपवाया है। ये अपने लिए बहुत बड़ी देन है क्योंकि गुरुदेव के प्रवचन तो है लेकिन उनके द्वारा बताया गया कोई ऐसा शास्त्र नहीं, जैसे हमारे पास जो समय सार के ऊपर 11 भाग है वैसे कोई नहीं है, तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है अपने लिए। तो हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा शॉर्ट है फिर भी जो कुछ है वो बहुत अच्छा है, कीमती है। अर्थ क्या कह रहे हैं, सर्वव्यापी यानी सबका ज्ञाता दृष्टा, एक चैतन्य रूप, मात्र चैतन्य ही जिसका स्वरूप है और जो स्वानुभव प्रसिद्ध है अर्थात शुद्ध आत्मानुभव से प्रकृष्टतया सिद्ध है। प्रकृष्ट का अर्थ मैंने बताया था उत्तम उत्कृष्ट, मैंने उत्कृष्टतम जिसको हम कहेंगे, इस तरह से उस ज्ञानानंदात्मक ज्ञान और आनंद स्वरूप उत्कृष्ट आत्मा को नमस्कार हो। ये तो हमने पहले इसके ऊपर बहुत विश्लेषण किया था, हा? अब हम केवल पढ़ते हैं, क्योंकि आपको अगर नहीं समझ में आता हो किसी को या कोई बात ख्याल में नहीं आती हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बात तो हमने पहले देखी थी। इस प्रवचनसार ग्रंथ में ज्ञान प्रधान कथन किया गया है। इसमें आत्मा क्या है, निमित्त क्या है, विकार क्या है आदि का स्वरूप बताएंगे। यह ग्रंथ ज्ञान प्रधान कथन करता है, इसलिए इसमें आचार्य देव सर्वप्रथम नमो अनेकांताय कहकर अनेकांत को नमस्कार करते हैं। ये अनेकांत यानी क्या बहन भावना बहन, अनेकांत का अर्थ क्या होता है? जो अनेक धर्मात्मक ऐसा जो वस्तु स्वरूप है, और वो वस्तु में मैं भी एक वस्तु हूँ, और मेरा स्वभाव कहो या मेरा स्वरूप कहो वह भी अनेकांतमय है, ऐसा कहकर उन्होंने अनेकांतमय यानी सारे को नमस्कार किया है। ग्रंथ के प्रारंभ में श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य देव विरचित प्राकृत गाथाबद्ध इस प्रवचनसार नाम के शास्त्र की तत्व प्रदीपिका नाम की संस्कृत टीका के रचने वाले श्री अमृत चंद्राचार्य देव श्लोक द्वारा मंगलाचरण करते हुए ज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करते हैं। जो दिव्य शक्ति अंतर में थी उसे पर्याय में जिन्होंने प्रकट किया है वे देव है। देखो गुरुदेव तो बारंबार कहते थे कि प्राप्तनी प्राप्ति करवी छे, यानी जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, कब से तो कहते हैं अनादि काल से, तुम्हारे तुम ही स्वयं वो हो, तो तुम कोई जुदे हो और वह कोई अलग है ऐसी बात है नहीं, वास्तविक तुम स्वयं ही वह हो, लेकिन ये समझाने के लिए जो तेरे पास है उसी को तुझे व्यक्त रूप प्राप्त करना है, प्रसिद्ध करना है, यानी उसके जैसा तेरा स्वरूप है वैसे पर्याय में लाना है कहो या पर्याय में प्राप्त करना है। इस तरह कहते हैं जो दिव्य शक्ति अंतर में थी उसे पर्याय में जिन्होंने प्रकट किया है वे देव है, ये देव का स्वरूप बताया उन्होंने। ऐसे भगवान का आत्मा कैसा है कि उन्होंने पूर्णानंद को प्राप्त किया है, यानी पूर्ण आनंद ऐसा जो स्वयं का स्वभाव है उसको पर्याय में उन्होंने प्रकट किया है। जो अंतर स्वरूप में था वह पाया है, वे सर्वव्यापी है, अर्थात त्रिलोकीनाथ देव का ज्ञान सर्वव्यापी है, वे तीन काल तीन लोक को देखते हैं। अब ये तो कहने की बात है तीन काल को देखते हैं और तीन लोक, तो तीन लोक के अलावा और भी कुछ जानते होंगे क्या अडोली? नहीं जानते होंगे, क्या जानते होंगे? यानी आपका कहना है कि उनकी कैपेसिटी अधिक जानने की है लेकिन कुछ है नहीं इसलिए वो नहीं जानते, ऐसा ही कहना है ना आपको? क्या ये सही बात कहती है लता बेन? हाँ अच्छा, बहुत अच्छा। सुशीला बेन आपका क्या कहना है? अभी सुनो। हाँ कौन कुछ कहना चाहते? डॉक्टर साहब का ऐसा कहना है कि जितना गेय है तो गेय में किसको लिया उन्होंने? तीन लोक और तीन काल। हाँ इंदु बहन कुछ कहना चाहती है? हाँ शाबाश, हम समझे तुम दिल्ली पहुंची है, यही है, बहुत बढ़िया।
रत्नकरण शावकाचार्य के पहले श्लोक में हमने देखा था नमः श्री वर्धमानाय निर्भूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकाना आलोका सहित तीन लोक,
यानी तीन लोक कहने से, तीन लोक कहने से आलोक आकाश को भूल मत जाना, तो आपने तो ऐसे ही बोल दिया, हाँ भाई जितना ज्ञान था हमने जाना। तो बोलते जो कैपेसिटी तो अनंत लोक को जानने की थी, हाँ लेकिन आलोक आकाश तो जानते हैं क्योंकि विश्व तो छह द्रव्यों का समूह है। ख्याल में ये तो बात ख्याल में आती है, क्योंकि छह जो द्रव्य है वो द्रव्य में जो आकाश द्रव्य है वो तो वो हमारी सहूलियत के लिए हमने उसके दो विभाग कर दिए, लोकाकाश और आलोकाकाश, और तीन लोक में खाली लोकाकाश के तीन टुकड़े कर दिए हमने मन में। वैसे कोई ऐसे वहां बाउंड्री लाइन नहीं है, समझ में आया? क्या अभी माटुंगा और सायन में कहां बाउंड्री लाइन है, कौन सा माटुंगा और कौन सा सायन है, समझते हैं कि भाई हाँ इधर से इधर और उधर से उधर जो भी होगा। ख्याल में तो उस तरह लोकाकाश और आलोकाकाश में ऐसा कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, लेकिन वह भी आकाश द्रव्य जो अखंड है, जो आलोकाकाश सहित है, वो उनको जानते हैं। ये तो कहने का ऐसा तरीका है कि तीन काल और तीन लोक को देखते हैं, जानते हैं, लेकिन उसमें हमें ये गर्भित रखना चाहिए, ज्ञान में आना चाहिए कि इसमें आलोकाकाश भी है। हाँ बोलो। जो बात ऐसी है, जो है वो जानते हैं ना,
कुछ है नहीं ऐसा नहीं, आकाश द्रव्य पूरा है अनंत।
आकाश द्रव्य देखो, आपने कभी गुरुदेव को साक्षात सुना हो या शास्त्र में उनके द्वारा मतलब बताए हुए शास्त्र में पढ़ा हो या तो टेप में सुना हो, तो ये लोकाकाश कैसा है? आकाश द्रव्य में एक अणुमात्र है, आलोकाकाश इतना बड़ा है, दसों दिशा जाओ जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, बस क्या बोलते थे अंग्रेजी मेरे को याद है, स्पेस स्पेस स्पेस, यानी खाली छे खाली छे खाली छे, क्या दसे दिशा, तो वहां कुछ नहीं है, यही तो है ना, है ना,
कुछ नहीं है ऐसा कैसा कहेंगे, आकाश द्रव्य है ना,
वो आपको दिखे नहीं उसको क्या करें, अभी धर्म द्रव्य भी नहीं दिखता है फिर भी वो जानते हैं ना। अब आपको प्रश्न ही, हाँ तो केवली गम में वो जानते हैं, हम भी जानते हैं ना,
केवली की बात चल रही है ना, केवली क्या जानते हैं,
हम भी मति श्रुति ज्ञानी जानते हैं ना, आकाश द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, जीव द्रव्य है, जीव को देखा आपने, तो जीव द्रव्य तो आरोपी है, फिर भी आप जानते हो ना कि मैं जीव द्रव्य हूँ, ख्याल में आए? वैसे धर्म द्रव्य भी आरोपी है, काल द्रव्य भी आरोपी है, फिर भी हम जानते हैं ना, उसमें केवल ज्ञान की क्या आवश्यकता है, हम भी तो जानते हैं मति श्रुत ज्ञानी, जो आगम प्रमाण है ना, वो प्रमाण है, छोटा खोटा थोड़ी है। अभी मेरा एक सादा प्रश्न है, वो हम पुद्गल को भी जानते हैं और अन्य पांच द्रव्यों को भी जानते हैं, एक इसके लिए कौन कारण है, किस कारण से हम ये जानते हैं? हाँ बोलो बोलो, ज्ञान। लीलाबेन आप बोल सो, आप सब लोग तो गुरुदेव के महा चेले हैं, हमारे जैसे बाहर बैठ के सुनने वाले नहीं है, आप लोग साक्षात गुरुदेव को सुना है आपने, और आप इतनी बात नहीं जानते। हाँ भावना बेन आप बताएंगे? हाँ नहीं, वो नहीं चलेगा। हाँ बोलो बेन, किसमें? हाँ शांति रखो मोटा भाई। हाँ प्रमेय तो गुण किसमें? देखा अभी सब एक साथ मिल गए और एक दूसरे को इंजेक्शन दे रहे। हाँ क्योंकि साइन वाले हैं ना भाई, सामान्य गुण जो प्रमेयत्व नामक जो सामान्य गुण है उसका काम ही है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी या कोई न कोई ज्ञान का विषय हो, ये उपादान शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है, निज शक्ति के दूसरे के ज्ञान में झलके, दूसरे ने कोई न कोई ज्ञान में झलके, दूसरे के भी नहीं, ख्याल में आया? ऐसा विश्व का स्वरूप है और वो गुरुदेव ने बताया, हम तो खाली गुरुदेव का नाम लेते हुए बहुत बड़ा मानने लगे हैं, ये तकलीफ है। और उन्होंने क्या बोला, वो बड़े पंडित लोग जाने, हमारा क्या लेना देना है, बोलो गुरुपति की जय, बात खत्म। अरे वाह अरे वाह, ये गुरु का नाम आप रोशन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, देखो तो सही। अरे हम तो अभी अभी पैदा हुए हैं, आप लोग तो बुजुर्ग हैं, क्यों सर? भाई गुरुदेव ने जो बात बताई है वो हम नहीं पचाए और हम गुरुदेव के चेले हैं ऐसा बोले तो उसका नाम कितना रोशन होगा। देखो जो भी बात है ना वो कायदे से, तर्क से, न्याय से सिद्ध होनी चाहिए, और यही तो बात गुरुदेव ने सिखाई अपने को कि आज हमने बोला तो आपने मान लिया, कल इसने बोला तो आपने मान लिया, कल उसने बोला तो मान लिया, तो अपना कुछ कन्फर्म नहीं है। भाई द्रव्यान योग तो ऐसा है कि वह तो परीक्षा प्रधानी है, और ये पांचों आगम जो है वह द्रव्यान योग के हैं, और परीक्षा करके हम उसको यह नक्की करेंगे, और वो भी परीक्षा करने यानी उसके में कोई शंका नहीं है, निशंकित अंग वाला वो वहां शंका नहीं है। हाँ यह तो ऐसा वस्तु का स्वरूप है, यह हम समझेंगे तो ही हम राइट योग्य मार्ग पर चल रहे हैं, नहीं तो बस आपने कहा हमने सुना, हमने सुना, तुम भूल गए, ऐसा नहीं चले भाई। हमारे यहां तो ऐसा है, हर बात को मैं पूछूंगा, नाराज नहीं होना, उसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, आपको थोड़ा सा सजग रखने का मेरा प्रयत्न है कि हम जो सोच रहे समझ रहे गुरुदेव ने बात बताई है, बिल्कुल बताई है, तो गुरुदेव ने कहां से बताई? साक्षात शास्त्र में लिखे, आगम में लिखी है, तो आगम में कहां से लिखी है? तो कुंदकुंदा आचार्य ने लिखी, कुंदकुंदा ने कहां से लिखी है? महावीर भगवान ने कही है, महावीर भगवान ने कहां से बताई? अरे जो वस्तु का स्वरूप है वो बताया, केवल ज्ञानी थे ना, उनके ज्ञान में क्या नहीं आवे, और जैसा है वैसा बताया, उसमें कुछ थोड़ा अधिक कम कुछ बताया होगा कि नहीं? नहीं बतावे, क्यों? अरे उनको अज्ञान था ही नहीं ना, सर्वज्ञ थे, और कोई राग द्वेष का कहीं कोई तिलमात्र भी वहां कोई उपस्थिति नहीं थी, पूरे पूरे वितराग थे। ऐसे भगवंतों के द्वारा बताया गया जो मार्ग है वह समझना अपना कर्तव्य है। कोई हमको ऐसा जैसा वो परीक्षा में दो चार मार्क कम मिल गए तो ग्रेस देके चलो ये सम्यग्दर्शन नहीं हो रहा है, अच्छा चल ये ले जा सम्यग्दर्शन, चल आगे चल आगे चल, ऐसा कोई नहीं कहने वाला है क्या डॉक्टर साहब? कोई पर का कार्य करता ही नहीं ऐसा स्वयं सर्वज्ञ ने बताया, और गुरुदेव ने हमको ठोस ठोस के समझाया। अरे उस कांजी स्वामी की तो कितनी तारीफ करे उतनी कम है। वो अभी बोलते हैं ना ये कुंदकुंदा आचार्य जैसे आचार्य नहीं होते तो हम जैसे आचार्य कहां जाते, ऐसे उनके बारे में शिलालेख मिलता है, वैसा हम कह सकते हैं कि गुरुदेव हमें नहीं मिलते तो हम कहां जाते, जहां से आए वहां जाते और कहां जाते कहां से आए बेन? निगोस से आए, क्या करे भाई, इनके तो हमारे ऊपर अनंत उपकार है कि इन्होंने ये मार्ग जो हमें समझाया है उसका क्या करें, कुछ कितना बोले उतना कम है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या बात हुई थी अपनी कि ये सारा लोका लोक जो जानते हैं, तीन लोक और तीन काल आ गए ना बात, वे तीन काल और तीन लोक को देखते हैं, उनकी वाणी में आया कि शरीर मन वाणी और पुण्य पाप का लक्ष्य छोड़ो, और एकमात्र ज्ञान का भंडार जो आत्मा उसका लक्ष्य करो, अंतर में सर्व को जानने देखने की शक्ति थी, उसके आश्रय से भगवान को पूर्ण दशा प्रकट हुई है। क्या कहा? देखो अभी तक अपनी जो बात निकली ना वो और एक बार मैं समझाना चाहता हूं कि ये आत्मा है तो वह तो पूर्ण ज्ञान स्वरूप ही है, सारे को जाने ऐसी उसमें क्षमता है, और कौन सी अच्छी बात है कि उसमें प्रमेयत्व नाम का भी गुण है, तो प्रमेयत्व गुण के कारण वह जानने में आ जाए, ज्ञान में जल के ऐसी भी इस आत्मा में शक्ति है, और स्वयं जाने ऐसी भी उसमें शक्ति है। तो अगर हमें जानना हो तो अन्य किसके पास जाना पड़े कि भाई हमको तो जनाओ, हमको तो जनाओ। स्वयं में दोनों प्रकार से निज शक्ति है कि ज्ञान में झलके और ज्ञान जाने। एक कथा याद आई, आप लोग बहुत सीरियस हो गए इसलिए कथा भी बता देता हूं, क्योंकि हमको तो हमारे पुष्पा बहन की तरफ देखे तो याद आता है कि अभी कहानी सुनाने का टाइम आ गया। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं भूले, हम कहानी को भूलेंगे, लेकिन आप अभी बड़े स्टैंडर्ड में आ गए ना। अभी कैसी बात हुई, एक था आदमी मेरे जैसा, उसको तो आत्मा का अनुभव करना था, तो वो एक उनके गांव में एक गुरु थे, उनके पास गया। बोले भाई आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा का अनुभव कैसा करें? अरे उसमें क्या है, तू स्वयं ही आत्मा है। क्या है तेरा काम? तो मेरे को आत्मा जानने का, आत्मा कैसा होता है, किधर होता है, अच्छी तरह को आत्मा जानने का है।
हाँ बिल्कुल,
ऐसा करो 12 वर्ष तक यहाँ मेरी सेवा करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो ऐसा रोज उसके घर में पानी भरे, वो क्या बोलते ढोर होते, उसको चारा मतलब सब घास वगैरह डाले, सब ऐसा जो कुछ काम होता है, बर्तन बर्तन मांझना, ये जो कुछ होता है उसका काम किया। 12 वर्ष पूरे हो गए। बोले साहब अभी आप बताओ, अभी मैं सच्ची बोलूं, मैं तुमको दूसरे का एड्रेस देता हूं, तो उसके पास जाना। तो उधर गया तो उसने सारा स्टोरी बताया, मैं गांव में ऐसा था, उससे दूसरे पंडित किसके पास गया, उसने आपके पास भेजा है। हाँ बहुत अच्छा हो गया, आ जा आ जा, तू 12 वर्ष मेरी सेवा कर, मैं बताऊंगा। ऐसे उसके पास भी 12 वर्ष सेवा की, फिर तीसरे के पास भेज दिया, उसके पास भी 12 वर्ष सेवा कर ली। 36 यानी 3 तप गए, तप यानी समझते 12 वर्ष काल को तप गए। फिर बोले अभी साहब बताओ, अरे तू तो स्वयं ही आत्मा है, तू यहां वहां कहां ढूंढ रहा है, तू अपने का अनुभव कर, अपने स्वरूप को पहचान। और अरे ये ऐसा ही है, तो ये तो मैं 36 साल पहले ही जान गया था। हाँ तो फिर इतना फिर मेरे को क्यों तुमने इधर से उधर सर्विस कराया, मेरी पूरी उम्र क्यों गई ऐसी? बोले तुझे भरोसा नहीं था ना, अभी तुझे भरोसा आया ना, जा। तो इस तरह अपनी पोजीशन न हो, यहाँ तो इतनी सरल बात बताई जाती है कि तू ज्ञान आनंद स्वभावी है, और जो तू है वह तेरे में स्वयं है, और वो तुझे प्राप्त करना है, बस प्राप्त नहीं प्राप्ति करवी छे। नहीं ये अभी ऐसा कोई होता है कि कुछ भी ऐसा बैठो वैसा बैठो, फिर रीढ़ की हड्डी सीधी करो, नाक के ऊपर देखो, आंखें ऐसा करो, फिर वो ऐसा वो कुछ करने को बोला था। ये मार्के की बात है। अरे तू ज्ञान स्वरूप है ना प्रभु, तो तू जान, जानने के अलावा अन्य क्या कर सकता है तू? लेकिन हमें तो कुछ ना कुछ क्रिया किए बगैर पेट नहीं भरता है, ख्याल में आया? कोई कोई करवानू क्यों, आ करवानू छे, क्यों करवानू छे, काय करवू नथी एज करवू छे, समझ्या? जानवू छे कोने, हम तो बधा दुनिया को जाने छे। अरे पहले स्वयं को जान, तो अपने आप पर तुझे जानने में आएगा, वो तेरे को उसके लिए कोई कसरत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या कह रहे देखो, अंतर में सर्व को जानने देखने की शक्ति थी, उसके आश्रय से भगवान को पूर्ण दशा प्रकट हुई है। अभी कहाँ देखना रह गया, हा? अपने स्व में ही ना। फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि मैं कोई अलग हूँ और वो देखने वाला कोई अलग है। कहने में तो ऐसा ही आएगा भाई साहब, लेकिन वैसा द्वैत है नहीं। अद्वैत नमस्कार बताया अभी पहले, चल रहा है वो तो यहाँ नहीं था, मूल शास्त्र में हमने देखा, पांचवे गाथा, पांचवे मंगलाचरण, कि वह जो अद्वैत स्वरूप यानी मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही ज्ञेय हूँ और मैं ही ज्ञान हूँ, ऐसे ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय ऐसा जिसमें अंतर फर्क नहीं है, ऐसा अखंड मैं हूँ, उसमें ऐसा कोई भेद नहीं है, अभेद अखंड ऐसा जो मैं हूँ, बस उसी को जानना है। इसलिए कहा कि सर्व को जानने देखने की शक्ति थी, उसके आश्रय से भगवान को संपूर्ण दशा प्रकट हुई है। पुण्य पाप के आश्रय से सर्वव्यापी पना प्रकट नहीं होता। किसके आश्रय से? हाँ वसंत जी भाई, हाँ तो हम क्या करना चाहते हैं? कुछ तो भी दान हा? ये वो जो भी आप समझ लो, कोई खिचड़िया उस चलाता है, कोई पैसे का दान देता है, कुछ तो भी पुण्य करे तो हमको कुछ न कुछ फायदा होगा। तो कहते पुण्य पाप के आश्रय से सर्वव्यापी पना प्रकट नहीं होता, चैतन्य ही उनका स्वरूप है। सर्वव्यापी पने का स्वरूप क्या है? चैतन्य। शरीर मनवानी बनिया अथवा ब्राह्मण उसका स्वरूप नहीं है, ज्ञान स्वभाव उनका स्वरूप है। परमात्मा से जो निकल गया वह आत्मा में से निकालने लायक है। क्या कहा देवेंद्र भाई? हाँ। तो काढ़वाना छे एटले शू? समझो समझो, बराबर है आपकी बात, बराबर है, आप सही कह रहे हैं। कि क्या कहा देखो, कि परमात्मा से जो निकल गया तो अभी हम कभी कभी ऐसा भी हमने बताया था, जो सुना हुआ ही बताया था, कि जब जब हमें कोई गुस्सा आता है या कोई कषाय हो जाता है तो हम इस वक्त ऐसा सोचना कि ऐसा प्रसंग किसी सिद्ध पर आ जाए तो क्या करेंगे। वो तो जानेंगे देखेंगे, तेरे को भी ऐसा ही करना। ये जो कह रहे थे ना वो यही बात है। देखो परमात्मा से जो निकल गया, अभी क्या निकल गया उनका, कि राग द्वेष के परिणाम निकल गए, तो वह आत्मा में से निकालने लायक है। मैंने वो रखने लायक नहीं है, पुण्य पाप के परिणाम तो कम से कम पुण्य के तो ना पड़े। क्या पुण्य को भी रखने लायक नहीं है, क्योंकि वह तो परमात्मा से भी निकल गया है। ये भाव आश्रय परिणाम, और परमात्मा में जो रह गया है वह आत्मा में रखने लायक है। यानी क्या कह रहे हैं? अरे भाई, जो तेरा स्वभाव है, जो तेरे अनंत गुण है, वह तेरे से बिखर कर अलग अलग ही नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं ना? क्यों नहीं अलग हो सकते हैं? हाँ शाबाश, हाँ बोलो, बहुत अच्छा, दोनों सही है। क्या कहा इन्होंने? उन गुण का और द्रव्य का नित्य तादात्म्य में संबंध रहता है, स्वभाव है ना वो। और क्यों नहीं अलग अलग हुए? तो अगुरु लघुत्म गुण नामक जो सामान्य गुण है वो प्रत्येक द्रव्य में है, तो वह द्रव्य यह बताता है कि उस गुण के कारण आत्मा में रहने वाले या कोई भी एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि परमात्मा में जो रह गया वह आत्मा में रखने लायक है। तो ये तो बताने की, समझाने की, उपदेश देने की पद्धति है, वो जाएंगे ही नहीं, लेकिन वो है उसका जो पर्याय में वैसा प्रकट पना करना है वह आत्मा में रखने लायक पना है, ऐसा समझना। अपने में शुद्ध आनंद, अपने में शुद्ध आनंद का अनुभव करके सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। देखो यहाँ तो पहले स्वयं का अनुभव किया, सिद्ध स्वरूप जैसा मेरा जो स्वरूप है उसका अनुभव किया, और बाद में सिद्ध को नमस्कार करते हैं। निश्चय नमस्कार पहला किया किन्होंने? यहाँ जो टीकाकार है ना अमृतचंद्राचार्य देव, उनकी बात कह रहे। उस उन ज्ञान आनंद स्वरूप उत्कृष्ट आत्मा को नमस्कार। यहाँ देव को नमस्कार करते हैं, वे दिव्य शक्ति को प्राप्त हुए हैं, अपने ज्ञान स्वभाव का अवलंबन पाकर पूर्ण दशा को प्राप्त किए हैं, ऐसे उन सिद्धों को यही नमस्कार यहाँ नमस्कार करते हैं। पर और विकार से निवृत्त होकर पूर्ण ज्ञान और आनंद दशा को प्राप्त करने वाले परमात्मा को नमस्कार। इस जगत को आनंद चाहिए, वह आनंद कहाँ से आएगा? लेंडी पीपर से 64 फुटी तिखास जो भरी पड़ी है उसमें से तिखास आती है। एक दवा है उसका नाम लेंडी पीपर है, सब जानते हैं उसको, तो उसमें जो तिखास तीखापन जो होता है वो उसी में होता है। कहीं वो पत्थर पे जिसने से पत्थर में से तिथास पना आता नहीं है, या उसमें थोड़ा पानी डाले तो पानी में से तो उसमें जो है मौजूद है वही उसमें से आता है। तो कहते हैं लेंडी पीपर में 64 पुटी तिखास जो भरी पड़ी है उसमें से तिखास आती है। जो स्वभाव भरा है उस शक्ति का विकास होता है, प्राप्त की प्राप्ति होती है।
आगे ना बस
आत्मा पूर्ण ज्ञान और आनंद से भरे हुए स्वभाव वाला है, उसमें से परमात्मा दशा प्रकट होती है। जिन्होंने एकमात्र ज्ञान और आनंद से भरे हुए अंतर आनंद कुंड का आश्रय लिया है उन्हें ज्ञान और आनंद पूर्ण प्रकट हुआ है। अज्ञानी जीव को ज्ञान और आनंद शक्ति रूप है। क्या कहते हैं, प्रत्येक जीव को कौन सा निगोदिया जीव ख्याल में आया, उसके भी ज्ञान और आनंद शक्ति रूप भरा पड़ा है। साधक जीव को ज्ञान और आनंद शक्ति रूप भी है, तथा पर्याय में भी ज्ञान और आनंद आंशिक प्रकट हुए हैं, और परमात्मा को पूर्ण देश प्रकट हुए। बहुत बढ़िया। परमात्मा को शक्ति में तथा व्यक्ति में भी पूर्ण ज्ञान और आनंद है। अज्ञानी को ज्ञान और आनंद जो शक्ति रूप है उसकी खबर नहीं। क्या कहा है, घर में तेरे बहुत पैसा पड़ा है और तू नहीं जानता है कि मैं करोड़पति हूँ, तो क्या चलाएगा? सब जानते हैं ना, चलाते हो ना रोज स्कूटर, सॉरी हाँ। ये तो बहुत प्रसिद्ध कहानी आज की तारीख में, रिक्शा वाला तो वो यही कहते हैं कि अज्ञानी को ज्ञान और आनंद जो शक्ति रूप है उसकी खबर नहीं है, अतः वह वंदन करने लायक नहीं है। किसको?
ज्ञानी वंदन करने लायक नहीं।
नहीं नहीं नहीं, अज्ञानी को जो ज्ञान और आनंद जो शक्ति रूप है उसकी खबर नहीं, अतः वह वंदन करने लायक नहीं है। अज्ञानी को वंदन करने योग्य वह नहीं है। साधक दशा अधूरी दशा है, इसलिए उसे यहाँ नहीं लिया है, मात्र पूर्ण ज्ञान। हाँ हाँ हाँ, आप जो कहते हो बराबर है। साधक दशा यानी वो यहाँ तो कह रहे हैं कि ज्ञानी को भी नमस्कार करने योग्य नहीं है, ऐसा बताया। देखो देखो, साधक दशा
की बात ही नहीं उठाई।
हाँ,
साधक की परमात्मा और अज्ञानी से दो लिए।
हाँ,
परमात्मा को तो पूर्ण आनंद व्यक्त हो गया इसलिए उनको नमस्कार करना योग्य है, यानी वे नमस्कार करने योग्य है। और अज्ञानी तो शक्ति रूप है, उसकी खबर भी नहीं है, इसलिए अज्ञानी को वंदन करना ठीक नहीं है।
और साधक दशा अधूरी दशा इसलिए उसे यही नहीं लिया है, मात्र पूर्ण ज्ञान
और आनंद की बात ही नहीं उठाई।
अच्छा, बीच वालों को लिया ही नहीं।
साधक तो नमस्कार करते हैं, पंच परमेश्वर में तो है वे भी, परंतु उनकी बात यहाँ नहीं लिया। एक तो परमात्मा और एक अज्ञानी से दो ही चीजें लिए।
बहुत अच्छा। भगवान को तीन काल तीन लोक को जानते हुए ही आकुलता नहीं रही और पूर्ण आनंद प्रकट होते ही दुख नहीं रहा, क्योंकि उन्हें अभी कुछ जानने का बाकी है ऐसा भी नहीं लगता है, जानने की कोई आकुलता भी उनको नहीं है, इसलिए वो पूर्ण सुखी है। उन्हें उत्कृष्ट आत्मा पर्याय अपेक्षा से कहा गया है। शरीर मन वाणी से आत्मा पृथक है, हिंसा झूठ चोरी तथा दया दान आदि विकार है। यानी देखो, हिंसा झूठ चोरी ये तो पाप परिणाम लिए और दया दान है वह पुण्य परिणाम लिए, इन सबको कहा विकार है, किंतु विकार रहित अंतर स्वरूप ज्ञान और आनंद में है जो शक्ति रूप है। जिन्होंने वह दिव्य शक्ति प्रकट की है ऐसे अरहंत और सिद्ध उत्कृष्ट इष्ट हुए, उत्तर करना उत्कृष्ट आत्मा है, उन्हें यहाँ नमस्कार किया है। मुनि साधक दशा में है इसलिए केवली परमात्मा को नमस्कार करते हैं। सर्वप्रथम देव को नमस्कार करते हैं, उन्हें दिव्य शक्ति प्रकट हुई है, वे सर्वव्यापी है, एक ही आत्मा सर्व में व्याप्त हो ऐसा इसका अर्थ नहीं है, किंतु सभी कुछ उनके ज्ञान में जानने में आ गया है इसलिए उन्हें सर्वव्यापी कहा है। जैसे लेंडी पीपर में 64 कुटी सिखास प्रकट करते हैं, रात और दिन लेंडी पीपर को घिसकर सिखास व्यक्त होती है, वैसे ही भगवान के पास ज्ञान और आनंद पूर्ण व्यक्त होता है। भगवान के आत्मा ने अपनी शक्ति ज्ञान और आनंद पुरुषार्थ से व्यक्त किया है। हे प्रभु, आपने निवृत्ति लेकर पूर्ण ज्ञान और आनंद व्यक्त किया है इसलिए भगवान को नमस्कार किया है। अभी निवृत्ति लेकर यानी कि पर पदार्थों को जानने में जो प्रवृत्ति हो रही थी उससे निवृत्ति लेकर अपने स्वरूप में एकाग्र हो गया,
पर पदार्थों का कार्य छोड़ दिया ना उन्होंने। ना अपन पहले परद्रव्यों का कार्य कर रहे थे, उसको छोड़ा ना कि नहीं छोड़ा? हाँ वसंत जी भाई, हाँ
यहाँ बैठते जब बोलते हो, यहाँ बैठते हो जब बोलते हो,
नहीं वहाँ भी बोलते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना? दुकान में भी बोलना
बोलना मत, समझना बस, बोलने की आवश्यकता नहीं है, जो हो रहा है उसको जानो, फायदा हुआ फिर भी जानो, नुकसान हुआ फिर भी जानो, उसमें ना अति आनंदित हो ना अति व्याकुलता हो, यही तो हमें सीखना है। यहाँ क्या कहा, हे प्रभु आपने निवृत्ति लेकर यानी आपने काम धंधा बंद किया, ये इन्होंने निवृत्ति लिया तो हमको भी लेना पड़े, नहीं नहीं ऐसा धर्म नहीं चाहिए हमको, ऐसा करके लोग डरते हैं। वो अभी उनकी क्या बात, अभी भगवान की क्या बात, हम दोनों ने निवृत्ति ली तो सब लोग बोल जा रही बाबू ये ऐसा इसके लाइन में हमको नहीं जाना है, क्योंकि सब घर बार छोड़ के बैठना पड़ता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करने का, ऐसा उल्टा मानते हैं। ये क्या कहा देखो, अब आपने निवृत्ति लेकर, या निवृत्ति का अर्थ ऐसा समझे पेंशन लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। ये शब्द का कुछ उल्टा पुल्टा अर्थ कर लेते हैं ना लोग। अब उसके बहुत बढ़िया उदाहरण सब लोग कहते हैं, यहाँ दिनेश भाई की यहाँ क्लास लगती है, तो हमारे लता बहन को सब पूछते कितना पैसा लेते हो, क्लास का क्या फी है, वो ऐसा मैं इसको बता दीजिए, अभी हमको ऐसा कोई पूछता था घर, अभी क्लास लेते यानी हम यहाँ प्रवचन नहीं करते इतना बताना है, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन आधे लोग तो स्वाध्याय का अर्थ ही नहीं समझते हैं। तो और हम तो वास्तव में भाई आपको थोड़ा सा सिखा दे ऐसा कहो तो चले, इतना तो सिखाने का इंग्लिश में क्या बोल रहे, क्लास लेते हैं, तो वहां तक गए कि चाटे क्लास भी चालू हो गया। चलो ये निवृत्ति लेना यानी पर में जो प्रवृत्ति होती थी, पर को जानने देखने में जो जीव अटकता था, या पर में यानी कोई पर पदार्थों में नहीं, अरे ये शरीर में इस राग यानी जो पाप पुण्य पाप के परिणाम है उसमें, या इस कर्म में जो कर्तृत्व बुद्धि आदि जो थी वो मेरे से टोटली भिन्न है ऐसा समझकर अपने स्वरूप में एकाग्र होना, उसको ही कहा है निवृत्ति लेकर पूर्ण ज्ञान और आनंद व्यक्त किया है। वास्तव में जब स्वयं में लीन हुए और पूर्ण ज्ञान और आनंद व्यक्त हुआ तो उन्होंने निवृत्ति लिया, ऐसा निगेटिव का कथन आएगा, लेकिन यह दोनों बातें बताई, इसलिए भगवान को नमस्कार किया है। शरीर मन वाणी में सुख नहीं, पुण्य पाप में सुख नहीं है, अपितु आत्मा में सुख है। आगे ना बात, ये परम यानी निवृत्ति किससे किससे ली, शरीर मन वाणी पुण्य पाप आदि में, उन्होंने ज्ञान और आनंद रूपी प्रयत्न से केवल ज्ञान और केवल आनंद प्रकट किया है, ऐसे परमात्मा को यहाँ नमस्कार किया है। इस तरह प्रवचन सार के प्रारंभ में मानस स्तंभ स्थापित किया है। हे पर मानस ओ मानस स्तंभ बराबर है ना, मानस स्तंभ यानी जो समोचरण में जब हम जाते हैं तो पहले मानस स्तंभ का दर्शन होता है। तो यहाँ भगवान की जो प्रणमन किया है या भगवान को जो नमस्कार किया है वो उन्होंने समझ लो कि प्रारंभ में ही मानस स्तंभ को स्थापित किया है। खुला क्या मनाएगा मंदिर दोस्त बराबर है ना। हे परमात्मा, आपने पर से तथा विकार से निवृत्ति लेकर परम आनंद और ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए आपको नमस्कार। आचार्य अपनी पूर्ण शुद्ध दशा को भाव नमस्कार करते हैं और परमात्मा को द्रव्य नमस्कार करते हैं। प्रश्न, चैतन्य द्रव्य की महत्ता है अथवा पर्याय की महत्ता है? यानी द्रव्य या पर्याय इस दोनों में किसकी महत्ता है ऐसा पूछते हैं। जिस पर्याय ने द्रव्य की महत्ता की उसकी महत्ता है। क्या कहा, पर्याय की महत्ता बताई भाई? नहीं देखो किताब है आपके पास? नहीं है आपके पास भी नहीं है? अच्छा अच्छा चलो देखो क्या कहते हैं। जिस पर्याय ने द्रव्य की महत्ता की उसकी महत्ता है। जैसे सुमेरु पर्वत के नीचे सोना अनादि से पड़ा हुआ है वह किस काम का, वैसे ही सभी की आत्मा में शक्ति रूप से जो पूर्ण ज्ञान और आनंद विद्यमान है उसका अनुभव नहीं होता, अपितु जिन्होंने शक्ति की यथार्थ समझ द्वारा भान करके उसी में एकाग्रता से पूर्ण दशा प्रकट की है उसकी महत्ता है। तो प्रकट की वो किसमें आएगा? तो आप क्या कह रहे थे? हाँ तो द्रव्य तो अनादि से पड़ा हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना कुमार ने घड़ा बनाया तो उसका त्रिकाली उपादान कौन? तो मिट्टी। तो मिट्टी तो त्रिकाल से पड़ी है, उसको क्या हो रहा है? ख्याल में तो उसको आप उपादान कारण क्यों कहते हैं? वह तो त्रिकाली उपादान है और उपादान के भी तीन भेद है। ख्याल में एक त्रिकाली उपादान और दो क्षणिक उपादान। तो वैसे जो पर्याय में जो कार्य घटा उस पर्याय की महत्ता ऐसा कह रहे हैं। देखो फिर से, जिस पर्याय ने द्रव्य की महत्ता की उसकी, यानी द्रव्य की महत्ता नहीं, वो जो पर्याय जो है उसकी महत्ता है। अब उदाहरण भी बहुत बढ़िया दिया उन्होंने। जैसे सुमेरु पर्वत के नीचे सोना अनादि से पड़ा हुआ है वह किस काम का, क्या फायदा? वैसे ही सभी की आत्मा में शक्ति रूप से जो पूर्ण ज्ञान और आनंद विद्यमान है उसका अनुभव नहीं होता, अपितु जिन्होंने शक्ति की यथार्थ समझ द्वारा, ये समझ कहाँ हुई? पर्याय में भान करके उसकी एकाग्रता से पूर्ण दशा प्रकट की। पूर्ण दशा कहाँ प्रकट हुई? पर्याय में। उसकी महत्ता है बराबर। संसार की आबरू तथा पुण्य का तो आदर नहीं है, किंतु अधूरी दशा का भी आदर नहीं है, अपितु पूर्ण दशा का आदर है। ये दशा है ना भाई साहब? वास्तव में तो इसमें आपने स्वभाव का ही आदर है। वास्तव में क्या है? वास्तव में तो इसमें अपने स्वभाव का ही आदर है। यहाँ पूर्ण दशा को भाव नमस्कार करते हैं और व्यवहार से विकल्प द्वारा द्रव्य नमस्कार करते हैं। जैसे विवाह करने वाला वर बड़ों को नमस्कार करके उनका उपकार मानता है, किंतु वह तो मात्र क्लेश वह संसार परिभ्रमण का ही कारण है। वो जो वर जो होता है वो बड़े लोगों को नमस्कार करता है, वह तो संसार का परिभ्रमण का कारण है, और यह परमात्मा को या अपने स्वरूप को जो नमस्कार करता है वह तो मुक्ति का कारण है, ऐसा बता रहा है। देखो चौथी लाइन फिर से पढ़ता हूँ। वैसे विवाह करने वाला वर बड़ों को नमस्कार करके उनका उपकार मानता है, किंतु वह तो मात्र क्लेश व संसार परिभ्रमण का ही कारण है, किंतु यहाँ तो संसार तिरने के लिए नमस्कार करते है कि अहो पवित्र ज्ञान आनंद को प्राप्त हुए माननीय महाजनों, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ, मेरे चिदानंद स्वरूप की मुझे लगनी लगी है, इसलिए आपको नमस्कार करता हूँ। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत की सच्ची शुरुआत है। ये पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 14 पे श्लोक नंबर 2 है।
हे लो लुप्त महामोह समस्तो मम देवत्यः प्रकाशय जगत तत्त्वम् अनेकांतमयम् मम।
अब अनेकांतमय ज्ञान के मंगल के लिए श्लोक द्वारा स्तुति करते हैं। अर्थ, जो महामोह रूपी अंधकार समूह को लीला मात्र में नष्ट करता है और जगत के स्वरूप को प्रकाशित करता है, ऐसा अनेकांत में तेज सदा जयवंत है। श्लोक 2 पर प्रवचन। पर्याय में जो विकार है वह आनंद रूप नहीं है, आत्मा में अनेक धर्म है, उसे बताने वाले ज्ञान और वाणी को यहाँ नमस्कार करते हैं। पर पदार्थ में तथा पुण्य पाप में सुख मानना वह मोह भाव है। क्या कहा नलिन भाई? और किसमें? हाँ आपने सुना भाई साहब, क्या क्या अभी कौन सा वाक्य पढ़ा था हमने? और पुण्य पाप भाव में सुख मानना, वो किस कारण होता है? तो कह रही ये मोह परिणाम है। पर पदार्थ में सुख वो क्या है? मोह का ही द्योतक है। पुण्य परिणामों में भी सुख, उसमें भी मोह परिणाम है, ये बताना चाहते हैं। अहो मैं ज्ञानानंदमयी आत्मा हूँ, शरीर शरीर में है, शरीर मेरे में नहीं है, विकार विकार में है, विकार मेरे में नहीं, इस प्रकार अनेकांतमय ज्ञान ही महामोह रूपी अंधकार को लीला मात्र में नाश करता है। अभी बहुत लोग पूछते हैं ना, हम क्या करें, क्या करें, कैसा करें, कैसा विचार करें, यहाँ अपने को मार्गदर्शन दिया है। क्या कहा? देखो, शरीर शरीर में है, शरीर मेरे में नहीं है, विकार विकार में है, तो विकार में किसको लेना? हाँ प्रभावित, पुण्य और पाप के जो परिणाम है उसको विकार में लिया, मोह जो है वह भी विकार है, तो यहाँ कहते हैं विकार विकार में है, विकार मेरे में नहीं है, मैं तो शरीर मन वाणी विकार से रहित ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा जो सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं, वही आगे बढ़ेंगे, ऐसा कह रहे हैं। देखो, अहो मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, शरीर शरीर में है, शरीर मेरे में नहीं, विकार विकार में है, विकार मेरे में नहीं, इस प्रकार अनेकांतमय ज्ञान ही महामोह रूपी अंधकार को लीला मात्र में नाश करता है। अभी बाकी का नाश कल, आज इतना ही बस, कल से लेंगे ये। हाँ आओ से लेंगे, चलो
वाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, तो वाणी मस्त कणमो सदा देत हो गो।
बोलो जिनवाणी माता की जय। देखो कल से यह जो अभी दिव्य ध्वनिसार भाग एक है वही लेके आना, मूल शास्त्र लाने की अभी तो कुछ दिन आवश्यकता नहीं है, एक दो दिन पहले बोलूंगा आपको।